एक भिलाई में 1983 में आचार्य महाराज के साथ जब हम सब लोग वहीं से विहार करते हुए निकल रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं स्टील प्लांट में और इंक्वायरी के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, 2000 रुपए मिलते हैं इस बात के लिए कि कोई भी स्टील प्लांट से कोई भी स्टील का एक पीस भी चुरा के बाहर ना ले जा पाए, क्योंकि जो लेबर है वो थोड़े थोड़े से पैसे के लिए और कोई ना कोई स्टील का एक पीस चुरा करके ले जाता है, 5-10 रुपए उसको मिल जाते हैं, तो उस चीज के लिए उसे नियुक्त किया गया। उसने मेरे से आके कहा कि महाराज बहुत दिक्कत होती है, मैं अगर ये लिख दूं कि ये यहां से इतना चुरा के ले गया तो इतने स्ट्रिक्ट हैं स्टील प्लांट वाले कि वे फिर मेरे उस लिखे हुए को ही ठीक मान करके बिना इंक्वायरी किए और उस को नौकरी से बर्खास्त कर देते। तब मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का वो पालन पोषण घर का कैसे करेगा, उसकी नौकरी ही चली गई, तो बहुत दया आती है। मैं जान रहा हूं कि ये चुरा करके ले जाता है हर 2-4 दिन में और 2-5 रुपए 10 रुपए की चीज चुरा के ले जाता है, पर मुझे लगता है कि इसकी गृहस्थी मुश्किल से चलती होगी तब तो ये चुरा के ले जाता है, और अगर मैं ये लिख दूं कि ये चुरा के ले जाता है तो मन नहीं मानता, और दूसरी तरफ मन ये कहता है कि जिस बात के लिए तुम्हें 2000 रुपए मिलते हैं, जिस कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया है, उस कर्तव्य को तुम पूरा कहां कर रहे हो, कितनी मुश्किल है। तब ऐसी स्थिति में सत भी बोलना है और प्रिय भी होना चाहिए, दूसरे के लिए अहितकारी नहीं होना चाहिए। आप बताइएगा कि क्या करें। मैं भी सोच में पड़ गया। फिर मैं रत्नगण श्रापकाचार पढ़ रहा था, उसी दौरान मैंने उनसे कहा कि आप एकाध दिन में मेरे से मिलिए, जरा मुझे सोचने दीजिए, मैं इस मुश्किल में पड़े हुए आपको कोई ठीक ठीक बात कहूं जो कि आगम सम्मत भी हो विरुद्ध ना हो, तो मुझे सोचना पड़े। मैं उसमें पढ़ रहा था तो मुझे उसका तरीका मिल गया कि एक सदगृहस्थ के लिए सत्य बोलने का उपाय घर गृहस्थी के बीच में बहुत आसान है। एक बार वह बोले गए झूठ को क्षमा करे, दूसरी बार वार्निंग दे, और तीसरी बार जो भी उसका पनिशमेंट होता है वो दे दिया जा सकता है। इतनी ही प्रक्रिया। सच मुझे बोलना है, मैं जानता हूं कि ये सच है, सामने वाले ने चोरी करी है, लेकिन अभी मैं अगर सच बोलता हूं तो उसका अहित हो जाएगा, इसलिए उससे कह दिया कि जाओ, क्योंकि पहली बार तुम्हें हमने ऐसा करते देखा है इसलिए क्षमा किया, अब मत करना। दूसरी बार अगर पुनः वह उसी चीज को कहता और हम जानते हैं कि ये इसने ऐसा किया है, तो हम उसे सिर्फ ये कहते हैं कि ट्वाइस, दो बार हो गया, वार्निंग। अब तीसरी बार अगर वो उसी प्रक्रिया को करता है तो जो सच्चाई है वो हम अब व्यक्त कर देंगे, क्योंकि हम दो बार उसे वार्निंग दे चुके थे, अब हम उस पर दया नहीं करते। सच हम इस तरह से अपने जीवन में बोल सकते हैं, कठोर फिर भी नहीं होंगे, असभ्य वचन फिर भी नहीं बोलेंगे, दूसरे को पीड़ा देने का हमारा कोई विचार नहीं है, उसे शिक्षा देने के लिए तीसरी बार हमें जो सच्चाई है वो कहनी पड़ी। इतनी सावधानी क्यों रखने के लिए कह रहे हैं? ताकि हमारा अपना जीवन सच्चा बन सके। ऐसा यदि हमारा व्यवहार होता है, ऐसा यदि हमारा सोच होता है, भाव होता है, तो ही हमारा जीवन अच्छा होगा। वरना हम लोगों के साथ मजा यह है कि हम अपने बारे में दूसरा कोई सच बोले ऐसा पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरे के बारे में जो कुछ भी सच्ची बात है वो हम कहना चाहते हैं। ये हमारा जो सामान्य रूप से एक आदत में हमारे व्यवहार में आ गया है वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीज नहीं है। हम दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे पहले हम ये देख लें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया होगी। सत्य की कसौटी यह है कि वो मुक्त करे। सत्य हमें उलझाता नहीं है, सत्य बोल करके हम मुक्त हो जाते हैं। वही सत्य समीचीन सत्य है जो कि हमें और दूसरे को मुक्त करता हो, बंधन में डालता हो, तकलीफ में डालता हो, वो सच नहीं है। और इतना ही नहीं, सच्चे मन से बोला गया झूठ भी सच है, वो झूठे मन से बोला गया सच भी झूठ है, ये सावधानी रखना। वो बीच में मुझे याद आ गया कि ये पॉइंट तो अपन मिस ही कर जाएंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद तो बहुत झूठे होते हैं लेकिन सच बोलने का दंभ करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति वाकई में भीतर सच्चा है, हम स्वयं सच्चे हैं, फिर हमारे मुंह से जो भी निकल जाएगा वो सच ही होगा। कैसे? क्योंकि वो दूसरे का अहित नहीं कर सकता। और झूठा व्यक्ति तो सच भी बोलेगा तो दूसरे का अहित करने के लिए बोले। इसलिए अपने मन को पहले परख लेना चाहिए कि मेरा मन झूठा तो नहीं है इस सच को बोलते समय। एक राजा